खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए। तो आए हम सब खुदा के हजूर झुकें और उसके जिंदगी बख्श कलाम में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए उसके कलाम में से सीखें। तो इससे पहले कि सीखना शुरू करें, अपने अपने दिल की हालत का जायजा लेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और पाक और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो हमारे बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और अरादों को खूब जानता है। तो अगर किसी तरह का गुनाह, गलती, खता, परेशानी, मायूसी है, फिक्र है, तो अपनी सारी फिक्रों को खुदावंद के सुपुर्द करेंगे। आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं। खुदा बाप, खाकसारी की हालत में तेरे हजूर आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं हर तरह के उस गुनाह को, परेशानी को, जो इब्लीस की तरफ से है, हमारे मुखालफ, हमारी पुरानी इंसानियत की तरफ से है, इस दुनिया की तरफ से। खुदावंद, सबको भूल कर इस वक्त अपने सोच, अपने दिल, अपने ख्यालात को तेरे सपुर्द करते हैं, क्योंकि तूने कहा कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी कुव्वत से अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत रख। तो आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सब तेरे कलाम में से सीखें और शेर हों और बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब। जैसा कि हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं रूहुल कुद्दस के बारे में, रूहुल कुद्दस के वो पांच काम जो रूहुल कुद्दस नजात के वक्त हमारी जिंदगी में करता है। हमने पहला काम रूहुल कुद्दस का सीखा था पिछले दिनों में, और वो क्या था? रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा। और रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे का मतलब यानी के मसीह में शामिल किया जाना, उसके साथ हमें नया बनाया जाना, या उसकी मौत के मुशाबा ठहरना, जिसे कहा जाता है कि जैसे वो खुदावंद खुदा मर गया, दफनाया गया और फिर मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह ये रूहानी तौर पर हमारे साथ ऐसा होता है। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हमें रूहुल कुद्दस मिलता है, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल होता है। ये बात हमने सीखी। आज हम सीखेंगे उन पांच कामों में से दूसरी बात, नई पदेश, जिसे नई जिंदगी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। और पहली बात गौर से सुने, नई पदेश ऐसा अमल है जिसके वसीला रूहुल कुद्दस हमें रूहानी तौर पर नया बनाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं इफिसियों पहला बाप उसकी 13वीं और 14वीं आयत को गौर से पढ़ें और सुने, और यहां से हमने ये अपना मजमून शुरू किया है। और खुदा का बंदा पालूस कहता है, जो बहन भाई पढ़ सकते हैं गौर से पढ़ें और सुने, इफिसियों पहला बाप उसकी 13वीं आयत, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मोहदा रूह की मोहर लगी। यहां पर पौलुस रसूल सिखाता है कि तुम पर यीशु मसीह में जब तुमने कलामे हक को सुना तो निजात मिली, किस तरह? जब तुमने अंजील की खुशखबरी को कबूल किया और उसके वसीला से रूहुल कुद्दस की मोहर लगी। और यहां से हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्दस के उन कामों के बारे में, और हम रूहुल कुद्दस के बारे में सीखने में ज्यादा वक्त गुजारेंगे और सीखेंगे रूहुल कुद्दस के नामों के बारे में, रूहुल कुद्दस के कामों के बारे में, रूहुल कुद्दस की नेमतें और बहुत सी दूसरी बातें, रूहुल कुद्दस के खिलाफ जो गुनाह है, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा और दूसरे बाकी सारी बातें सीखेंगे। और फिर 14वीं आयत में पौलुस कहता है, वही यानी के रूहुल कुद्दस खुदा की मलकियत, खुदा की मलकियत कौन है? हर एक ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है। खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मियाद का मेरास का बयाना है। रूहुल कुद्दस हमें बयाने के तौर पर दिया गया है और हम उसकी मेरास हैं, ताकि हमारी जिंदगी से खुदा की सताइश हो। तो ये दो आयात हैं जिसकी बुनियाद पर हम सीखेंगे रूहुल कुद्दस के बारे में। सो आज हम सीखेंगे नई पैदाइश, नई जिंदगी, नए सिरे से पैदा होना। नई पैदाइश ऐसा अमल है जिसके बारे में या जिसके वसीला से हम खुदा पाक रूह हमें क्या बनाता है, नया बनाता है, जिंदा करता है। हमारे मुर्दा हालत को वो जिंदगी बख्शता है, हमारे टूटे हुए रिश्ते को वो बहाल करता है, हमारी मुर्दा हालत को वो रूहानी तौर पर नया करता है। इसके लिए मेरे साथ देखें इफ़सियों, इफ़सियों 2:4। ये इस बात का सबूत है कि एक वक्त था जिसमें खुदा का कलाम कहता है 4 में, मगर खुदा ने अपनी रहमत की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की। यहां पर खुदा मोहब्बत करने वाला है। जैसे आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत के बायस आप बहुत कुछ करने के लिए कुर्बान, बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनको उनको रोटी कपड़ा तन पर देने के लिए और उनके सर पर छत धरने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, और ये क्या है? उनकी जिम्मेदारी, उनकी मोहब्बत है। इसी तरह खुदा ने भी अपनी रहमत के बायस हमसे मोहब्बत की। और 5 में पालूस कहता है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे। पालूस रसूल माजी की बात कर रहा है कि जब हम मुर्दा थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया और हमको फजल ही से क्या कहता है, निजात मिली है। वो कहता है कि एक वक्त था जब तुम रूहानी तौर पर मुर्दा थे, लेकिन अब रूहुल कुद्दस के वसीला से नए बनाए गए हो। और ये किस तरह हुआ? खुदा ने अपनी रहमत के बायस किया। मेरे साथ एक और हवाला देखें, तीतस का खत उसका 5:3। ये आपको पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस के बाप तीतस का खत मिलेगा, उसका 3:5। यहां पर नई जिंदगी के बारे में पालूस सिखाता है और कहता है, तो उसने हमको निजात दी। तो उसने, उसने कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है जिसने हमको निजात दी, मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं। पालूस कहता है कि खुदा ने हमें निजात, रहाई, जैसे किसी को जेल से छड़ाया जाता है, इसलिए पालूस कहता है कि उसने हमको रहाई या निजात या आजादी इसलिए नहीं दी कि हमने कुछ किया या हम में कुछ खासियत पाई गई, नहीं, बल्कि कहता है मगर निजात, हमको निजात दी मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक। रहमत से मुराद यानी के अपने तर्स के मुताबिक। खुदा ने तर्स किया, खुदा ने दर्द मंदी दिखाई, खुदा ने रहम दिली की, खुदा की ये मेहरबानी, वो कहता है कि ये खुदा की मेहरबानी है, करम नवाजी है जिसे कह सकते हैं, खुदा की शफकत है। आप इसे इन अल्फाजों में देख सकते हैं कि खुदा ने मेहरबानी की है जिसके वसीला से हमें नई पैदाइश का गुस्ल यानी कि नए तौर पर नई जिंदगी के लिए उसने हमें धोकर क्या किया, पाक और साफ किया, और रूहुल कुद्दस के हमें नए बनाने के वसीला से। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम नई मखलूक हैं, हम नई मखलूक बन जाते हैं, नए लोग बन जाते हैं। बेशक जिस्मानी तौर पर हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन ये रूहानी तब्दीली हमारे अंदर खुदा के साथ सुकूनत करती है। ये नई पैदाइश है जिसे बाइबल मुकद्दस में कहा गया है नए तौर पर पैदा होना। इसलिए आप आसमानी मखलूक हैं। बेशक आप इसे महसूस नहीं कर सकते, बेशक आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये वो रूहानी सच्चाई है जो निजात के वक्त हमारे अंदर हकीकी तौर पर जगह लेती है। और ये काम किसका किसका है? रूहुल कुद्दस का। रूहुल कुद्दस कौन है? खुदा का पाक रूह जो हमें मदद के तौर पर दिया गया है, हमारा मददगार है, जो हमें कुव्वत देगा, जो हमें अकल देगा, जो हमें क्या करेगा, खुदा की बातें सिखाएगा। और ये वही रूहुल कुद्दस है जो बहुत दफा आपके अंदर वो छोटी सी धीमी आवाज में बोलता है। जब हम गलत रास्ते की तरफ जाते हैं तो ये धीमी आवाज हमारे अंदर से बोलती है कि बेटे राजू इस रास्ते पर ना जाना, बेटे रजेश इस रास्ते पर ना जाना, बेटे बावर इस रास्ते पर ना जाना, ये गलत है। ये वो धीमी आवाज क्या है? रूहुल कुद्दस की आवाज है जो हमारे अंदर है, जो हमें नई जिंदगी बख्शती है। और इस तरह हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और इसे क्या कहा गया है? नई पैदाइश या नए सिरे से पैदा होना। इसलिए हम नए मखलूक हैं क्योंकि ये ईमान के बायस है और खुदा की अपनी रहमत के बायस है। इसमें हमने अगर कुछ किया है तो सिर्फ ईमान रखा है, क्योंकि हमारा काम हमें कोई भी रासबाजी की बात नहीं छुपी हुई बसी हुई। इसलिए ये खुदा का अपना क्या है? काम है रूहुल कुद्दस के वसीला से हमारी मुर्दा हालत को जिंदा करना, हमें नया बनाना, हमें नई जिंदगी देना। और ये सब कुछ खुदा ने बेफायदा तौर पर नहीं किया। खुदा ने इसके पीछे एक मकसद रखा है कि हम उस नई जिंदगी में जिंदगी गुजारें। इसलिए एक और हवाला मेरे साथ देखें। हम ईमान के बायस खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। मेरे साथ एक और हवाला देखें, पहला पत्रस पहला बाप उसकी 23वीं आयत, कि क्यों रूहुल कुद्दस हमारे अंदर जब सुकूनत करता है हम नई मखलूक बन जाते हैं। क्योंकि जैसे खुदा अब्दी है, वैसे ही जो कोई यीशु मसीह ने कहा है मुझ पर ईमान रखेगा वो अब्दी जिंदगी का वारस है। जैसे यीशु मसीह ने मार्था से कहा था कि मार्था कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा खा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। इसलिए पहला पत्रस उसका पहला बाप उसकी 23वीं आयत को देखें। यहां पर खुदा का बंदा पत्रस कहता है क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। आप सोचते होंगे कि ये फानी तुखम क्या है और ये गैर फानी तुखम क्या है। यहां पर खुदा का बंदा पतरस कहता है तुम फानी तुखम से पैदा नहीं हुए। उसके कहने का मतलब यानी कि ये जो रूहानी पैदाइश हुई है ये इंसानी नहीं है। पानी का मतलब यानी कि फना होने वाला, गल सड़ जाने वाला, या जिसे कहते हैं मर जाने वाला या हलाक होने वाला। तो खुदा का बंदा पत्रस कहता है कि तुम जो नए सिरे से पैदा हुए हो अब तुम पानी नहीं हो बल्कि गैर फानी हो। गैर फानी का मतलब है जिंदा रहने वाला, बाकी रहने वाला, कायम और दायम रहने वाला, हमेशा तक, अबदी और लाजवाल। जैसे खुदावन खुदा क्या है, कायम और दायम है, जैसे वो इब्तदा से इंतहा तक है, वैसे ही जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जैसे ही जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जैसे यीशु मसीह अब्दी है, वैसे ही उसमें हम गैर फानी बना दिए जाते हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने ये कहा कि ऐ मौत, तेरा डंग कहाँ रहा? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मौत, तेरा डंग कहाँ रहा? चलो ठीक है। इसीलिए उसने हमको कहा कि तुम फानी नहीं बल्कि गैर फानी हो, जिसे कह सकते हैं कि तुम अब जिस्मानी नहीं बल्कि आसमानी मखलूक हो, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह से पैदा होता है वो आसमानी मखलूक बना दिया जाता है, और ये आपकी रूहानी हालत है। इसका आपको यकीन करने की जरूरत है, और ये आपकी रूहानी हालत है खुदा में। इसलिए जब कोई भी इस जमीन से फारग होता है, या जिसे कहते हैं फौत हो जाता है या मर जाता है, खासकर ईमानदार जो यीशु पर ईमान रखता है, वो हमेशा की जिंदगी खुदा के साथ गुजारेगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है वो हलाक नहीं होगा। इसीलिए हम बहुत दफा जबूर गाते हैं, उच्चे तेरे महल च बारे लोकाने मल लैने ने, लेकिन यसु नाल प्रीत जिना दी सो पापी बच जावनगे। यानी कि जो कोई यसु से प्यार करता है, जो कोई यसु से मोहब्बत रखता है, वो जैसे वो अवधि है, उसके साथ हमेशा की जिंदगी गुजारेगा। तो ये पत्रस का कहने का मतलब है कि अब तुम पानी नहीं रहे, फना होने वाले नहीं रहे, बल्कि गैर फानी हो गए हो। क्यों? इसलिए गैर फानी हो गए हो क्योंकि खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है। खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम काम करता है और जिंदा और कायम है। नए सिरे से पैदा हुए, पालूस रसूल कहता है बेशक हर शख्स घास की मानद है, उसकी शानो शौकत फूल की मानद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। दूसरे लफ्जों में इंसान फना हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा के कलाम की वो जो बात कह रहा है कि तुम गैर फानी हो, यानी कि अब तुम खून और गोश्त से नहीं बल्कि रूहानी मखलूक हो, तुम कायम रहोगे, क्योंकि खुदा का कलाम टल नहीं सकता। इसलिए मेरे साथ एक हवाला देखें, ये नई पदाइश का मतलब यानी कि अल्लाही कुदरत के बायस आसमानी मखलूक बना दिए जाते हैं, ना कि जमीनी मखलूक। बेशक हम जिस्म रखते हैं, लेकिन हमारी रूहानी हालत क्या है? हम यीशु मसीह जिस तरह जीता है, हम उसके साथ जिंदगी गुजारेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। ये सच ईमानदारों को जानने की जरूरत है। बहुत दफा जब फौतगी होती है तो कह देते हैं कि फजल मसीह फौत तो हो गया है, लेकिन अब कोई पता नहीं कि वो खुदा के साथ अब की जिंदगी गुजारेगा या नहीं। ये अबलीस का बहुत बड़ा झूठ है। खुदा हमें निजात इसलिए नहीं देता कि हमने कुछ अच्छे काम किए और फिर हमें निजात देता है, और जब हम मर जाते हैं या मरने से पहले अगर कोई चोरी या झूठ या फरेब या शराब या किसी और हालत में मरे तो खुदा हमसे निजात ले लेगा? नहीं। खुदा जो कहता है वो करता है। इसलिए खुदा ने कहा है हमेशा की जिंदगी उसकी है जो मेरे बेटे पर ईमान रखता है। अगर हम ऐसी बात पर यकीन करते हैं कि मरने के बाद हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये कहां पर बेटी या बेटा जाएगा, तो फिर ये इब्लीस का बहुत बड़ा झूठ है कलीसिया के जहन में पाने के लिए। इसलिए आप पर यह वाजिया करना चाहता हूं कि हम रूहानी मखलूक हैं, नई मखलूक हैं, लेकिन ये सब कुछ करने का खुदा का मकसद क्या है? कि हम जमीन पर दोजखाना जिंदगी गुजारें, या गुनाह में जिंदगी गुजारें, या गुनाह की ताबेदारी में जिंदगी गुजारें, या मौत के खौफ में जिंदगी गुजारें? खुदा का हरगिज ये मकसद नहीं है। खुदा चाहता है कि हम गुनाह पर फतह हासिल करें, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों पर फतह हासिल करें, अपनी जिस्म के उन तमाम गुनाहों पर फतह हासिल करें। और यह किस तरह होगा? जो कुव्वत, जो ताकत रूहुल कुद्दस की आपके और मेरे अंदर सुकूनत करती है। आगे चलकर हम इसी बात के बारे में सीखेंगे। तो मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे कि खुदा क्या करता है निजात के वक्त, रूहुल कुद्दस क्या करता है हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर तौर पर, रूहानी तौर पर, पोशीदा तौर पर क्या हमारे साथ होता है। यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 12वीं आयत, यहां पर गौर से सुने, यहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन हम वक्त को मुनासबत वक्त को मद्देनजर रखते हुए सीखेंगे चंद एक बातें। लेकिन जितनों ने यानी के सब ने, जो कोई भी, खा कोई गरीब है, अमीर है, किसी भी नस्ल, किसी भी कबीला से, किसी भी जात से, किसी भी रंग, किसी भी मुल्क से उसका तल्लक है, पालू खुदा उनका बंदा यूहन्ना कहता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसे किसे? खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी कि इख्तियार दिया, कुव्वत दी, उनको ये बहुत बड़ी इज्जत और ये इस्तेहकाक बख्श दिया कि खुदा के फर्जंद बने। और किनको? यानी उन्हें, सिर्फ उन्हीं को जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जब कोई ईमान ले आता है तो क्या होता है? 13वीं आयत को देखे, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के अरादा से। यहां पर खुदा का बंदा यूहन्ना सादा तौर पर कहता है कि ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के अरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। यानी कि अब वो फानी सोच या फानी तरीकाकार से या फानी कुव्वत से नहीं, बल्कि खुदा से पैदा हुए है, यानी कि नई पैदाइश, नई पैदाइश, नई मखलूक, जिसका हमें जिक्र मिलता है कि हम अब जिस्मानी तौर पर मुर्दा हैं, लेकिन रूहानी तौर पर जिंदा किए गए हैं। और ये आपकी और मेरी रूहानी हालत है। अब हम मसीह में रूहानी तौर पर जिंदा हैं, लेकिन जिस्म की हालत में हम क्या हैं? मुर्दा हैं। जिस्म को हम पर कोई भी इख्तियार नहीं है। जब भी हम जिस्म को इख्तियार देते हैं, ये आपकी और मेरी अपनी मर्जी होती है कि हम जिस्म की ख्वाहिश के ताबिया होते हैं, हम अपनी जिस्म की ख्वाहिश को अपने ऊपर गालब आने देते हैं, हम जिस्म की ख्वाहिश को मौका देते हैं झूठ बोलने का गुनाह, बदई बदकारी का गुनाह, नशावार चीजों में मुब्तला होना, दूसरे बद नजरी का गुनाह, झूठ बोलने का गुनाह, जहनी गुनाह। ये सब कब होते हैं? जब हम अपने जिस्म के ताबिया अपने आप को करके रूहुल कुद्दस को कहते हैं कि तू, हमें तेरी जरूरत नहीं, हम अपनी कुव्वत में कुछ करना चाहते हैं। इसलिए खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कि खून और गोश से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के रहादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ये कौन लोग हैं? जो कोई यीशु पर ईमान रखता है, जो कोई यीशु पर ईमान रखता है। बाइबल मुकद्दस में एक भी हवाला नहीं मिलता, 23,000 से ज्यादा आयात हैं, एक भी आयत नहीं मिलती जिसमें खुदा चाहता है या खुदा हुक्म देता है कि तुम कुछ करो ताकि मैं तुमको नए सिरे से पैदा करूं। खुदा सिर्फ कहता है, मेरे बेटे पर ईमान रखो। खुदा सिर्फ कहता है कि उस पर ईमान लाने के बायस तुम रूहुल कुद्दस को हासिल करोगे, उसके ऊपर ईमान रखने के बायस कि उसने सलीब पर जान दी है, मुर्दों में से जी उठा है और आसमान पर चढ़ गया है और वहां पर अब्दी तौर पर बैठा है, वैसे ही जो कोई मुझ पर मेरे बेटे पर ईमान रखेगा वो भी उसी तरह हमेशा की जिंदगी का वारस होगा। इसलिए जो कुछ खुदा कहता है वो करता है, क्योंकि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। इसलिए ये क्या है, हमारी रूहानी हालत है। और ये बात यीशु मसीह ने उस वक्त के मजहबी रहनुमा को, उस वक्त के रब्बी को, उस वक्त के उस्ताद को सिखाई और उसे समझ ना आई। इसी यूहन्ना की इंजील में हमें निकुदीमस की कहानी के बारे में बखूब याद होगा कि यीशु मसीह उसे बात कर रहा था आसमानी बात, और यीशु मसीह उसे आसमानी भेद के बारे में सिखा रहा था, लेकिन वो जमीनी बात ही सोच रहा था। इसलिए हम रूहानी तौर पर नए बनाए गए हैं, ये हमारी रूहानी हालत है कि उसने हमें तारीकी से, मौत से, गुनाह से, आदम की उस लानत से निकाल कर क्या किया है, अपने बेटे की बादशाही में, बरकत में, नूर में, जिंदगी में और उसकी बादशाही में दाखिल किया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह तीसरे बाब में यूहन्ना की इंजील में निकुदीमस को कहता है, यीशु मसीह ने उसे जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तीन बाब उसकी पांच आयत, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? जो जिस्म है वो जिस्म से है और जो रूह है वो रूह से है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। इसलिए ये क्या है, यीशु मसीह ने उससे कहा कि बेशक तूने शरीयत की किताबों को पढ़ा है, बेशक तू यहूदी है, बेशक तू सारी नबूवतों से वाकिफ है, लेकिन मेरी बादशाही में दाखिल होने के लिए तुझे मुझे पर ईमान रखने की जरूरत है। इसी तरह हर रोज हमारे बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान रखने की जरूरत है, उसे कबूल करने की जरूरत है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं मसीही हूं तो मेरे बच्चे भी मसीही हैं और उसकी मखसूसियत हुई है। निकुदीमस की मखसूसियत हुई थी, वो रब्बी है, और यहां पर क्या लिखा है, यहूदियों का एक सरदार था। सरदार से मुराद के वो बहुत ज्यादा इलम रखने वाला, यहूदी त्योहार के मुताबिक, मजहब के मुताबिक वो सब कुछ जानता था, लेकिन उसे नई जिंदगी हासिल नहीं थी। इसलिए हमें अपने बच्चों को, इसलिए अपनी कलीसिया में उन लोगों को, बेशक हमारी मखसूसियत तो यह है, बच्चे का बपतिस्मा हुआ है, लेकिन नई जिंदगी का जो तजर्बा है वो सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। सो आए हम खुदा के हजूर झुकें। अगर पहले कभी किसी ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया बच्चों में से, तो वो शख्सी तौर पर ये कह सकता है कि खुदावंद मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तुझ पर ईमान लाती हूँ। अगर मजीद बातचीत करना चाहते हैं तो दुआ के बाद सवाल जवाब पूछ सकते हैं ताकि हम इस बारे में सीख सकें। आए हम खुदा के हजूर झुकें। खुदा बाप, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र हो, इस नई पैदाइश के लिए तेरा शुक्र हो कि तूने हमें नई मखलूक बनाया है, मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल किया है, लानत से निकाल कर बरकत दी है, ताकि हम तरीकी में से निकल कर नूर में शामिल हों। और ये तूने इसलिए किया है ताकि इस जमीन पर नूर के फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजारें, तारीकी में नहीं, गुनाह में नहीं, मौत में नहीं, लानत में नहीं, बल्कि बरकत के फर्जंद ठहरें, नूर के फर्जंद ठहरें, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बने और एक दूसरे को तेरे बारे में बताने वाले बने। सो आज के पैगाम के वसीला से آئے ہوئے تمام بزرگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔